है भाई। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 15/9/69 की, उसमें ज्यादातर क्या पूरा ही माताओं के बारे में ही बोला गया है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा है कि भाई आवाज में रहते हुए, आवाज में से बाहर आप जा रहे हो और मुझे भी, मुझे आवाज में बुला रहे हो, इसका क्या कारण है। इसके बाद अपनी अवस्था के बारे में बाबा ने पूछा है कि भाई अपनी अवस्था के बारे में जानते हो, अपने नंबर के बारे में जानते हो, फिर माताओं का क्या कर्तव्य है इसके बारे में फिर बाबा ने बोला है। फिर इसके बाद कहा है कि भाई वहां पर आप सेंटर में रहते हुए भी पढ़ाई भी करते हो और फिर भी आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो बाबा ने कहा कि भाई कोई विशेष मकसद के लिए मैंने आपको बुलाया है कोई, तो उसके लिए नष्ट मोह के बारे में, क्योंकि माताओं में सबसे कमजोरी होती है नष्ट मोह की, उस मोह की रख को खत्म करने के लिए बुलाया है। इसके बाद बाबा ने आगे भी जैसे तुम्हारी याद है उसी यादगार के याद के हिसाब से आपका यादगार बनेगा, तो उसमें हमें खुद देखना है कि मेरी, मैं किस कैटेगरी में हूँ, कहाँ तक मैं पहुंची हूँ अभी, इसके लिए मुझे और आगे क्या प्रचार करना है। इसके बाद बाबा ने कहा है कि हरेक की अपने अपने गुण देखने हमें भी, हमारे अंदर क्या दूसरों के अंदर जितने गुण हैं सब उनके अच्छे अच्छे गुण अगर हम अपने अंदर लेंगे तो एक अपने आप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। फिर इसके बाद बाबा ने तिलक के बारे में कहा है कि माताओं को चंद्रमा का तिलक लगाया है, चंद्रमा का और सूर्य का गहरा संबंध होता है, इसके बारे में बाबा ने बताया है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा आवाज से परे जा रहे हो या बाबा को अपने पास बुला रहे हो, साकार में बुला रहे हो, तो जब हम अतींद्रिय सुख का अनुभव साकार में ही कर सकते हैं तो वहां जाने की क्या जरूरत है। तो इसके बारे में फिर बाबा ने कहा भाई इसके लिए हमें ड्रिल सीखनी है, एक सेकंड में निराकारी और एक सेकंड में आकारी, साकारी रूप धारण करेंगे। अगर हम ये रूप धारण अपना करेंगे तो औरों को भी इसकी अनुभूति करवा सकेंगे और हमारे निराकारी रूप, जैसे ही हमारी ये ड्रिल रहेगी आकारी साकारी और निराकारी की, तो इससे औरों को भी हमारे साकार रूप में होते हुए भी निराकारी अवस्था का उनको अनुभव होगा, उनको साक्षात्कार होगा। फिर इसके बाद बाबा ने कहा भाई आपने अपने रूप का साक्षात्कार किया है, अपने नंबर का साक्षात्कार किया है, ब्राह्मण तो तुम हो लेकिन असली और आपका नंबर क्या है उसका आपने कभी साक्षात्कार किया है, और इस समय हम युक्ति युक्त ढंग से किस रूप में सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा जगत माता के रूप में, क्योंकि ये माताओं का ही प्रोग्राम था इसलिए माताओं के बारे में ही बाबा ने कहा भाई माता तो आपको बने रहना है लेकिन जगत माता बनना है, माता के रूप में यहाँ पर सेवा करनी है, कहने का मतलब बाबा का यह है, और जगत माता आपको बनना है। तो जगत माता बनने के लिए हमें यहीं पर हमारे सारे संस्कार धारण करेंगे, तो माताओं में क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके लिए चिंतन करना है भाई माताओं में क्या विशेषता है। सबसे पहले तो त्याग की भावना माताओं में बहुत होती है, वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। तो इस तरह बाबा ने माताओं के बारे में कहा है। तो वैसे भी कहते हैं लौकिक में भी, जैसे लौकिक हमारे रिश्ते हैं उसमें पहले क्या करते हैं, जैसे मामा मामी चाचा चाची, जब उसमें है ना जेंट्स को भाइयों को पहले लिया गया, लेकिन बाबा ने जो संगम युग पर हमारे जो रिश्ते कायम किए तो उसमें बहनों को माताओं को आगे रखा है, तो इसलिए लक्ष्मी नारायण सीताराम ऐसे हमारे रिश्ते कायम रहते हैं और मंदिरों में भी हमारी उसी रूप से पूजा होती है माताओं की। तो ये बाबा ने इस संगम युग पर माताओं को बहनों को इतना आगे रखा उसका ही हमारा हम पूरा कल्प चलते हैं। और वैसे भी कहते हैं यत्र नारीयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये हमारे भारत की ही संस्कृति है। इसके बारे में बाबा ने खुद, बाबा तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो तो एक क्वेश्चन देके और बच्चों पर छोड़ देते हैं ताकि वो दूसरी बातों में नहीं जाए और उसी में उसी चिंतन में लगे रहे। इसी तरह वैसे भी कहते हैं आसमा का, जैसे आसमान का कोई अंत नहीं है, ऊपर का कोई अंत नहीं है उसे आसमा कहते हैं, धरा का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, धरा का कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उस बेअंत ईश्वर का अंत भी माँ से है क्योंकि उसे परमात्मा कहते हैं, क्योंकि लास्ट में माँ उसे परमात्मा कहते हैं। तो इसलिए बाबा ने है ना हर तरह से, क्योंकि माताएं बड़ी भोली होती हैं, हमारे सेंटर में एक माता है वो लगभग 85 साल की है, लेकिन वो कभी कॉपी पेन लाना नहीं भूलती, उसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो कॉपी पेन हमेशा लेकर आती है और आएगी आते ही किसी के पास आके बैठ जाएगी, दीदी मेरा लिख दो, तो फिर वो जरूर लिखवा के लेके जाती है और उसकी याददाश्त इतनी तेज है, जैसे मुरली खत्म होगी उस टाइम क्वेश्चन करेंगे तो हर एक का जवाब देगी वो। और फिर एक दिन मैंने पूछा कि भाई आप इसका लिखवा के फिर क्या करते हो, बोलिए रात को मेरे पोता पोती पढ़ देते हैं, मेरी दोहराई हो जाती है, तो इसलिए माताओं फिर बाबा ज्यादा फिदा है ना, क्योंकि माताएं इतनी साफ दिल की होती हैं। तो इसके बाद बाबा ने माताओं से पूछा कि भाई यहाँ क्या करने के लिए आई हो, माताओं का प्रोग्राम था ना, भाई स्टडी तो तुम वहां भी कर सकते हो, कोर्स ही तुम्हारा वहां पर पूरा हो गया है, ज्ञान के बारे में भी आपको पूरा मालूम हो गया है, तो लेकिन यहाँ क्या करने के लिए आई हो। तो बाबा ने कहा तुम्हें नष्टा, भाई बाबा मेरा कोई विशेष मकसद था आपको बुलाने का, तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें नष्टो मोहा बनाना है, नष्टो मोहा बनाने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, तो उसके लिए नष्टो मोहा बनने के लिए सबसे जरूरी है सच्ची स्नेही बनना, और सच्ची स्नेही कौन होगी, वो सिर्फ एक से ही लगन रखेगी, एक से हमारी लगन रहेगी तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, और उसके लिए जैसे हमारी सती प्रथा थी, सती प्रथा में दिखाया जाता है कि वो एक की ही लगन में मगन रहती है, एक के स्नेह में ही मगन रहती है, जब उसका पति शरीर छोड़ देता है तो भी वो उसके साथ ही चली जाती है, तो ये हमारी ही संस्कृति है, ये हमारे बाबा से ही कनेक्टेड है ये, क्योंकि बाबा का बनने के बाद हम एक की ही लगन में मगन रहते हैं, हमें दूसरा सब फीका दिखाई देता है, तो इसी तरह ये हमारी प्रथा भी हमारे इसी, जहां तक मेरा ख्याल है बाबा ने जो ये प्रथा बनाई है एक ही लगन में मगन रहना, तो वही हमारी प्रथा, पति को परमेश्वर मानते थे ना, इसीलिए वो साथ ही उसके साथ चली जाती थी, तो ये सती प्रथा का भी है। फिर इसके बाद बाबा ने कहा भाई आपने अपने नंबर को जैसे देखा है ना, तो आपका नंबर आगे क्या होगा, इसके लिए हमें अभी चेकिंग करनी है, क्योंकि हमारी याद के आधार पर ही हमारी यादगार बनेगी, तो याद की आधार पर यादगार बनने के लिए हम जैसे देवियों के बारे में देखते हैं, तो जैसे वैष्णो देवी है, तो आज संगम युग पर जो हमारे कम मन कर्म वचन वैष्णव होंगे तो वैष्णो देवी के रूप में ही हमारी पूजा होगी, तो उसके लिए फिर उनके पहाड़ों पर हमारे ज्यादा मंदिर होते हैं, क्योंकि वो आज की हमारी जो ऊंची स्थिति है उसी का प्रतीक होती है। इसके बाद दुर्गा, आज हम अपने दुर्गुणों को अपने अवगुणों को दूर नहीं करेंगे तो उसमें इसके रूप में हम पूजा नहीं करवा पाएंगे, तो क्या मेरे अंदर, हम ये अपना खुद चेकिंग करें क्या मेरे अंदर कोई दुर्गुण तो नहीं है, मैंने सबको दूर कर दिया या अभी बाकी है, तो उसकी हम अपनी चेकिंग करें। इसके बाद महालक्ष्मी, क्या मेरी हमेशा दातापन की भावना रहती है, क्या हम हमेशा देने की भावना के साथ रहते हैं, इसलिए महालक्ष्मी का हाथ हमेशा ऐसे दिखाया जाता है और उससे नोट सिक्के गिरते हुए दिखाए जाते हैं, तो इसी तरह हम ज्ञान रत्नों की बरसात करते रहे, और आज संगम पर हम बाबा के मददगार बनेंगे तो जितना बनेंगे उसका कई गुना हमें रिटर्न मिलेगा, तो हम क्या हर लक्ष्मी के रूप में अगर पूजा करानी है, या फिर जैसे हम अपनी पढ़ाई करते हैं बाबा के ज्ञान में लगन में मगन रहते हैं, क्या हम 24 घंटे रहते हैं, हम किस कितना टाइम तक रहते हैं, तो मंदिरों में भी उसी हिसाब से जैसे मंदिरों के पट खुलते हैं, द्वार खुलते हैं, तो किसी का 6 महीने एक बार, महीने में एक बार खुलता है, तो किसी का 24 घंटे खुलता है, तो कभी एक हफ्ते में खुलता है, तो क्या मैं संतोषी माँ हूँ जो एक हफ्ते में ही खुलवाऊंगी अपना मंदिर, तो इसी तरह ये हमारी संगम युग पर जैसी याद है वैसी हमारी यादगार बनेगी। फिर इसके बाद उमा, क्या संगम युग पर बाबा मुझे मिला उसके बाद मैंने उमंग उत्साह में रहते हैं हम रहते हैं या अब भी हम डिले डाले रहते हैं, उमंग उत्साह में रहने के लिए उमा के रूप में अगर पूजा करानी है तो हमें उमंग उत्साह में रहना पड़ेगा। इसी तरह एक होता है एक जैसे देवी तो जिसको चंडिका भी कहते हैं, तो हम क्योंकि हम यहाँ रहते हुए भी बाबा का ज्ञान लेते हुए भी हम उसका फायदा नहीं उठाते, हम इधर उधर की बातों में रहते हैं, अड़चन डालते रहते हैं, तो वो भी वो हमारी ही कमी है। और इस संगम युग का हमने कोई भी फायदा नहीं उठाया। फिर इसके बाद एक ऐसी होती है जिसको चौराहे पर स्थापित करते हैं एक देवी, तो क्या हम बाबा के ज्ञान में रहते हुए बाबा का स्मूथली ज्ञान जो चल रहा है उसमें अड़चन तो नहीं डाल रहे हम? अगर हम अड़चन डालेंगे तो कहाँ पर हमारी मूर्ति होगी? चौराहे पर होगी, क्योंकि हम ट्रैफिक जाम रखेंगे। क्यों? ट्रैफिक जाम रखने का मतलब ये है ना कि हम ज्ञान में रहते हुए भी और फिर कहीं कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आलोचनाएं करते रहेंगे, तो उससे जो आने वाली आत्माएं हैं वो पीछे ही हटेंगी। तो हमने हमें ज्ञान होते हुए भी हम उस ज्ञान का फायदा नहीं उठा पाए, और अपने 21 जन्म है उसमें भी हमारा पता नहीं कहाँ नंबर आएगा, और बाद में फिर हमारी मूर्ति भी ऐसी होगी जो देखने वाले जो भी ट्रैफिक वाले एग्जाम में फंसे रहेंगे और ये कहेंगे मूर्ति किसने स्थापित कर दी यहाँ पर, और कोई जगह नहीं थी उसको यहाँ से हटाना है। फिर इसके बाद एक मूर्ति और रखती है उसके बारे में आप थोड़ा चिंतन करना, वैसे मैंने तो कर लिया तो एक मूर्ति ऐसी होती है जैसे मान लिया यहाँ पर मेरा मकान है, ये खाली प्लाट है, उस दीवार के साथ लगा देते हैं लाके। वो मूर्ति किस लिए होती है? क्योंकि कोई यहाँ पर गंदगी ना फैला कर जाए, इसलिए वो मूर्ति होती है। उसकी पूजा उसका पूजा उसकी कुछ नहीं होती, लेकिन वो थोड़ा दूसरे की मदद कर देती है। तो यहाँ पर रहते हुए बाबा से हमें कोई मतलब नहीं, बाबा मिल गए बस ठीक है, क्या जरूरत है। एक बार मैं वहां पर नीचे सुखधाम में योग लगा रही थी, एक माता आई, उसके पैरों में पायल थी, बहुत तेजी से वो छन 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 ऐसे आवाज। मैं उसके साथ साथ बाहर निकल के आई, मैं उसको बोली आप बाबा के घर में आए हो, आप इस पायल को ना दो दिन बाद पहन देना, इनको निकाल दो। ने बोली क्यों निकाल दू बहन जी, ये तो मेरी देवी की पायल है, मैं थोड़ा ही बजा रही हूँ, मेरी देवी बजा रही है ये। तो वैसी भी है जो बाबा के घर में आते हुए उनको अब तक ये नहीं पता कि बाबा ही सुप्रीम है। तो ये हमारे ऊपर ही है सारा, भाई हमें किस रूप में हमारी पूजा करवानी है, क्योंकि बाबा ने कह दिया जैसी याद वैसी यादगार, यहाँ करके छोड़ दिया, बाबों बच्चों को चिंतन करने के लिए छोड़ दिया, अब भाई हम कौन सी देवी बने। उसके बाद बाबा ने कहा भाई हमें है ना सबके गुण देखने हैं, अगर हम सबके गुण देखेंगे और विशेष गुण देखेंगे और उनको अपने अंदर धारण करेंगे तो हम अपने आप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, इस पर बाबा ने बोला है। सर्वगुण तो हमें गुण धारण करने हैं तो दूसरों से लेकर, इसलिए कहते हैं ना अवगुण अपने देखो और गुण दूसरों के, तो देखने का मतलब उसको हम धारण भी करें, सिर्फ देख लिया ये बहुत अच्छा है उससे काम नहीं चलेगा, उसको हमें अपने जीवन में धारण करना है। इसके बाद बाबा ने ना चंद्रमा का टीका लगाया माताओं को, चंद्रमा का, तो इसके लिए भी बाबा ने कहा चंद्रमा और सूर्य का गहरा संबंध है, तो बाबा ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, तो दोनों का गहरा संबंध है। शिव बाबा से रोशनी लाइट ली, रोशनी ली और बच्चों को बांट दे दी, इसी तरह वो चंद्रमा है वो भी सूर्य से प्रकाश लेता है और संसार में को देता है, और इसके साथ साथ वो शीतलता का भी प्रतीक होता है, और अब उसका कर्तव्य है शीतलता प्रदान करना और रोशनी प्रदान करना। तो इसी तरह हम बाबा के बच्चे भी उस ज्ञान सूर्य से उस ज्ञान चंद्रमा से शीतलता रोशनी प्रकाश और अपने ज्ञान गुण शक्तियों को बांटे। तो बस मुरली यहीं तक है। हाँ नष्टो मोह हम बन सकते हैं कि हमारी ये लोक मर्यादाएं हैं और हमारी कर्म बंधनों की रस्सियां हैं, ममता के धागे हैं, इनको हमें छोड़ेंगे, और उनको हम तब छोड़ सकते हैं जब हमारी ये है ना स्नेह की अग्नि में हम जलाएंगे इसको, क्योंकि जो चीज जलाते हैं तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, वो दोबारा उस अवस्था में नहीं आ सकती। तो इसी तरह हमें इन मर्यादाओं के इनके सारे धागे ये सब जला देंगे तो किससे स्नेह की अग्नि से लगन की अग्नि से हम जलाएंगे तो हम पूरी तरह से नष्ट मोहा हो सकते हैं और एक ही लगन में मगन रह सकते हैं। और जब हम एक की लगन में मगन रहेंगे तो साइड की कोई भी बातें हमें याद नहीं आएंगी। और कोई क्वेश्चन भाई? शांति। शरीर का नाम कृष्णा है, लगभग 30 साल से बाबा की बच्ची हूँ, लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए मेरा छूट गया था, इसलिए 27-28 साल की बाबा की बच्ची हूँ। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
आज मुरली है, 18 सितंबर 69। धीरे धीरे आपको संभालनी मुश्किल हो जाएगी, कहोगे काम करो। तो आज बाबा ने त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनाने की युक्तियां बताई। बाबा ने शुरुआत में ही परेशान कर दिया, किसको देखते हो?
परेशान कर दिया,
परेशान।
अच्छा, परेशान कर दिया।
परेशान। बाबा ने शुरू में ही क्वेश्चन कर दिया, किसको देखते हो, आकार को या अव्यक्त को? आकार को देखने से आकर्षण मूर्त नहीं बनते, अव्यक्त को देखने से आकर्षण मूर्त बनते हैं। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपनी और अपने से औरों को आकर्षण होगा। आगे बाबा कहते हैं, व्यक्त में क्यों आ जाते हो? व्यक्त बनना अच्छा लगता है, फिर भी व्यक्त में आ जाते हो। मालूम भी है विव्यक्त में आने से व्यर्थ संकल्प आते हैं और व्यर्थ कर्म होते हैं, तो व्यक्त में फिर भी जल्दी आ जाते हो, अव्यक्त में देरी से टिकते हो। ये भी पता है विव्यक्त में आने से, मालूम है विव्यक्त में आने से क्या नुकसान है और व्यक्त में आने से क्या फायदा है, तो फिर क्यों व्यक्त में आ जाते हो? तो बच्चों ने जवाब दिया, भूल जाते हैं। बाबा कहते, भूलते क्यों हो, दे अभिमान में क्यों आ जाते हो? अनुभव भी है विव्यक्त में आने से क्या नुकसान है और व्यक्त में आने से क्या फायदा है। व्यक्त में आने से क्या नुकसान है?
बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते
हैं। क्या नुकसान?
एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, व्यक्त को देखने से चिंतन भी बैठे चलेगा,
व्यक्त संकल्प आएंगे, व्यक्त कर्म होंगे और
व्यक्त समय
अशांति होगी, बाप को भूल जाएंगे। और अव्यक्त में आने से क्या फायदे?
शक्ति मिलेगी,
समर्थ संकल्प आएंगे, समर्थ कर्म होंगे, शांति आएगी, बाप का साथ मिलेगा और खुशी आएगी। फिर बाबा पूछते, जब याद में बैठते हो तो देह अभिमान से देह अभिमानी में कैसे स्थित होते हो? तो बच्चों ने जो जवाब दिया, बाबा कहते, ठीक है, अपना मतलब पुरुषार्थ ठीक कर रहे हो। फिर बाबा कहते, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है, इस आकर्षण से दूर हटने की कोशिश करनी है। तो जैसे एग्जांपल दिया, चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खींच जाते हैं। तो अगर आपको किसी चीज को दूर करना है आकर्षण से, जैसे चुंबक से, तो कैसे कर पाएंगे? या तो चीज को दूर कर देंगे या बीच में कोई चीज रख देंगे। इसी प्रकार यदि अभिमानी या व्यक्त भाव जो है यह भी चुंबक के माफिक ना चाहते हुए भी उसमें आ जाते हैं, तो बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए क्या चाहिए? संयम, नियम। अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति ठीक है, और स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। अगर बीच में ये संयम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं कर पाएगी। इस पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति जाता है, कहते है मेरे को दीक्षा दे दो। तो महात्मा कहते हैं मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरा एक मित्र है नदी के पार, उसको एक डब्बा देना। एक डब्बा देता है, उसको डब्बा दे आना। तो वो डब्बा ले जाता है, रास्ते में उसको बोलता है अभी डब्बे में देखूं तो सही क्या है। तो वो खोलता है डब्बा, तो उसमें एक चूहा होता है। वो चूहे में तो भागना ही था, वो नदी में जल जाता है, भाग के कहाँ था ना था। फिर वो वहां जाता है, कहता है ऐसे ऐसे हुआ, अभी मेरे को ऐसे दिया था, मैंने खोल लिया। वो कहते कोई बात नहीं, वहां बस करके वो वापिस भेज देता है। फिर महात्मा के पास आते है मेरे को दीक्षा दो। महात्मा कहते आप तो दीक्षा के लायक नहीं हो, जब एक चूहा ही नहीं संभाल के रख सके तो इतना उच्च ज्ञान कैसे रख पाओगे। तो ये मेन बात ये भी संयम नहीं है, संयम नहीं था उसको, तो वो संभाल नहीं पाया, तो उसको दीक्षा नहीं मिली।
डब्बा बंद रख रहे
हैं। इसके लिए तीन बातें ध्यान में रखनी है, स्वयं की याद, संयम और समय। इन बातों को ध्यान रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकपूर्ण। फिर आगे बाबा ने बात करी चित्र, विचित्र और चरित्र के बारे में। कोई भी चित्र अर्थात शरीर को देखते हो तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन उसके अंदर, चित्र के अंदर है जो देखो, चित्र के अंदर जो है उसको देखना है। चरित्र, चित्र के अंदर चरित्र या चेतन को देखना। चेतन और चरित्र को देखो तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से जो चित्र अर्थात देह का भान है उससे दूर हो जाएंगे। हर एक में कोई ना कोई चरित्र जरूर है, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सबके गुणों को देखना है, अवगुणों को नहीं देखना। तो चरित्र और चेतन अर्थात विचित्र को देखो, देह की आकर्षण जो ना चाहते हुए भी आकर्षित करती है वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए। फिर अगली आसक्ति और शक्ति के बारे में बात करें। आसक्ति के बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। देह के पदार्थों की कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो याद रखो मैं शक्ति हूँ। शक्ति में फिर आसक्ति आ नहीं सकती। आगे है मताओं का विशेष विघ्न क्या है? बाबा ने पूछा माताओं का विशेष विघ्न क्या है? बच्चन जो मोह। बाबा ने कहा पहला वायदा कौन सा था आपका? जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाओगे खाएंगे, जहाँ बिठाओगे वहाँ बैठेंगे। पहला वायदा ही भूल गए, ट्रेनिंग क्या करोगे? पहला पाठ तो पक्का करो। आप सब सरेंडर हो? तो बच्चों ने कहा हाँ। तो मोह कहाँ से आया फिर? मतलब मरे हैं, जले नहीं है। रावण को भी पहले मारते हैं फिर जलाते हैं, तो मर जीवा बने हो परंतु जलकर एकदम खाक बन जाए वो नहीं बने हो। सरेंडर हुए हो तो तन मन धन सब अर्पण कर दिया, तो श्रीमत के अनुसार ही लगाना है। तो तन से कोई व्यर्थ कर्म ना हो और मन में भी कोई व्यर्थ संकल्प ना आए और धन भी व्यर्थ खर्च नहीं करना। जब तन मन धन सब कर दिया तो श्रीमत अनुसार चलना है। मोहजीत बनने के लिए अपना वायदा याद रखो। जिसने मन दे दिया उसकी अवस्था क्या होगी? मन मना भव, उसका मन वहीं लगा रहेगा, इस मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं। जो मन मना भाव होगा उसमें मोह हो सकता है क्या? कौन सा ठप्पा लगवा कर निकलेंगे ट्रेनिंग से? कौन सा ठप्पा लगवा कर निकलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। मोहजीत का, अगर मोहजीत का ठप्पा लग जाएगा तो सीधी पोस्ट ठिकाने पर पहुंचे। अगर मोहजीत का ठप्पा नहीं होगा तो पोस्ट ठिकाने पे नहीं पहुंचेगी। समर्पित समारोह में भी उन माताओं को बुलाएंगे जिनको ठप्पा लगा है और जल्दी करेंगे समर्पित समारोह। माताओं का चल रहा है इसमें तो मेरा होएगा। मेरा होएगा। बस इतना ही। ओम शांति।
ओम शांति। बाप दादा एंजॉय करते हैं कब? जब माताओं को देखते हैं क्या क्या इन्वेंशन करती है, क्या क्या चतुराई करती है और क्या क्या तरीके खोज कर निकालती है तब। तो भारत माता की जय। भगवान कहता है, वंदे मातरम कहता है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है क्योंकि यहाँ बाप आकर माताओं को पहले रखते हैं। इसके लिए भी इंग्लिश में कहावत निकली है तब से। कौन सी? लेडीज फर्स्ट। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की। तो अभी अभी जो मुरली चली, हमारे पास 5-10 मिनट है, हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो बाबा जो कुमारों में नहीं है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो कुमारों में नहीं है?
कुमारों में वो माताओं में नहीं है।
पालना, बोला ना जगत माता, स्वयं को जगत माता समझना है। केवल माता नहीं, विशेष जगत माता समझो और सबकी पालना करो विश्व की। नहीं कर सकते। युगल। तो जो अव्यक्त वाणी चली 18 जनवरी को, उसमें बाबा ने टीचर और स्टूडेंट का संबंध बताया। एक आइडियल स्टूडेंट जो होता है, एक आदर्श विद्यार्थी, उसके क्या क्या लक्षण है वो बताइए। सबसे पहले तो रेगुलर। और बाबा ने क्या कहा, अगर एक दिन भी रेगुलर है और आज ही रेगुलर हुआ है तो भी रेगुलर की लिस्ट में आ गया है। इतनी बड़ी ऐसे सीखना नहीं पर। तो सबसे पहले रेगुलर होगा, रेगुलरिटी, नियमितता। जो भी कार्य करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो क्लास हो, कुछ भी हो, उसमें रेगुलर, हर बात में, मुरली सुनने में, मुरली पढ़ने में, मुरली का चिंतन करने में, मुरली का मनन करने में, मुरली की पॉइंट्स को लिखने में। पॉइंट्स इस तरह से लिखो कि ताकि वो याद रहे, उसको सजा के लिखो, उसमें नवीनता लाओ। लिखने में विदेशियों को देखा होगा ना कैसे लिखते हैं पॉइंट्स, चार्ट बताते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो स्टडी जो होती है स्टूडेंट के लिए, एक तो स्टडी रूम रहती है उसकी,
डेली लिखते हैं।
तो स्टूडेंट एटीट्यूड आने के लिए एक स्टडी रूम चाहिए, उसमें आप टेबल कुर्सी इस तरह से एक ही जगह बैठकर जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, वहां जाते ही क्योंकि हमको याद रखने के लिए वो स्थान भी जुड़ जाता है, हम किस स्थान पर स्टडी करते हैं और अलग अलग स्थान पर स्टडी करना है, तो जिस जिस स्थान पर जो जो मुरली पड़ी गई उस स्थान के साथ में उस मुरली को जोड़ देना है, ताकि वो स्थान याद आते ही वो मुरली याद आएगी फिर, या जो मुरली सुना रहा है बहन उस बहन के साथ भी उसको थोड़ा जोड़ देना है, उस वातावरण के साथ भी उसे थोड़ा जोड़ देना है। तो रेगुलरिटी ये पहला गुण है स्टूडेंट का, कि वो रेगुलर हो, हर बात में रेगुलर हो। पढ़ाई की बात चल रही है खाली यहाँ पर, तो पढ़ाई पढ़ने में रेगुलर हो, याद करने में रेगुलर हो, रिवाइज करने में रेगुलर हो। एक दूसरा, उसका टाइम टेबल फिक्स रहेगा, कब क्या करना है, कैसे करना है, पहले वो थोड़ा प्लानिंग करेगा हर चीज का, तो प्लानिंग बुद्धि होगा। और बहुत सारे गुण हैं, हाँ, जिसको कहते हैं क्या, डेडलाइन अपनी फिक्स करेगा कि ये तारीख तक मुझे ये करना है, हमेशा एक एक हफ्ते की डेडलाइन। जैसे हमने ये टारगेट रखा कि पूरा मंथ में 69 की मुरली हमको कंप्लीट रिवाइज करना है, और लगभग आधी तो ज्यादा हो गई, तो अगर ये डेडलाइन नहीं रखे, कईयों ने मुझे क्या कहा, ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, इतना चिंतन नहीं हो रहा है जितना चिंतन होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, पर अगर चिंतन के लिए टाइम दिया जाए ना, तो वो कभी नहीं होगा। ये जो मेथड है बस इसी से होने वाला है, वो पूरी अगर आपको दे दिया जाए कि दो महीना है, ये लो 69 की मुरली और पढ़ो, कब से पढ़ी है, सालों से किताब वैसी पढ़ी है, उसका आप पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे और छोड़ देंगे। डेडलाइन जब दी जाती है तभी काम होता है, हाँ, तब नींद फिट जानी चाहिए, अस्वस्थता आ जानी चाहिए, रेस्टलेसनेस, ऐसा लगना चाहिए कि और थोड़ा टाइम होता तो बहुत अच्छा होता, तो ये जो अवस्था है अस्वस्थता की, उसी में पढ़ाई होती है। जैसे एग्जाम आती है तो कैसे लगता है कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और टेंशन आ जाता है, और उसी में पढ़ते हैं, और उस टाइम पे ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा पहले से पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा लगता है हर एक को एग्जाम आने के बाद, परंतु पहले से नहीं होता है पढ़ना, वो टेंशन ही चाहिए उसको पढ़ने के लिए। हाँ, तो वो जब रहेगा ना तो फिर होता है, तो उसके सिवा नहीं होता है। तो डेडलाइन टारगेट फिक्स कर देना कि ये तारीख तक मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जैसे वो मार्क ट्वेन करके एक लेखक है विदेश में, वो लोग जब भी इधर उधर घूमते रहते थे दोस्तों के साथ, अभी कभी एक बहुत ऊंची दीवार आ जाती थी और उधर जाना होता है, तो ऐसा लगता है क्या जाना, तो क्या करते, अपनी अपनी टोपी उतारते थे और फेंक देते थे उस तरफ, अब जाना ही है क्योंकि टोपी उधर चली गई तो डेडलाइन फिक्स करना। और स्टूडेंट की निशानी एक्यूरेट होगा, अलर्ट होगा, सजग जागृत, और टाइम वेस्ट नहीं करेगा, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो, चाहे रेडियो पे कुछ प्रोग्राम हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो बस पढ़ाई करेगा, बस उसको पढ़ाई के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। और भोजन भी डॉक्टर हीना बता रहे थे उस दिन, बचपन में वो जो पढ़ते थे तो भोजन भी टाइम वेस्ट लगता था इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट, इतना पढ़ाई में शौक, हम लोग भी जब थे बस ऐसे इधर भी नहीं देखना, बस लेते रहना पढ़ाई, तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। बाबा ने कहा इंटरेस्ट को बढ़ाओ, शौक को बढ़ाओ, अटेंशन को बढ़ाओ, होमवर्क दिया है मुरली अभी अभी मुरली में, तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी बात में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारा टाइम पढ़ाई। तुम लाइट हाउस हो, चलते फिरते ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, मुरली में था कुछ दिन पहले, हाँ टाइम को चुरा लेना है, अलग अलग जगह अपनी किताबें रख दो मुरलियों की, या मोबाइल तो है ही, यहाँ रखो वहाँ रखो, वहाँ खड़ा वहाँ जाना है तो वहाँ वो, वहाँ जाना है तो वहाँ वो,
दो किताबें
रखी नहीं, अपनी दिनचर्या के अनुसार जहाँ हमारा डिपार्टमेंट है वहाँ वहाँ वो, वहाँ वो चेयर पे बैठते तो वहाँ वो किताब होगी, उधर जाते तो वहाँ वो किताब होगी, अलग 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 जगह मुरलिया, कहीं स्पार्क की किताब, कहीं मुरलियों की किताब, कहीं ज्ञानामृत रखा हो तो कहीं कुछ रखा हो, उधर जाते हैं लाइब्रेरी में तो वहाँ कुछ और, तो ऐसे स्थान फिक्स कर देना है। हाँ, बस के लिए वेट करेंगे तो पढ़ेंगे, किसी के लिए वेट करेंगे तो पढ़ेंगे, कहीं पर भी टाइम वेस्ट ना हो। और स्टूडेंट नोट 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 निकालने की जो आदत है ना, बहुत अच्छी आदत है नोट मेकिंग, क्योंकि मन में कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो वो भी नोट करते रहेगा। कुछ क्लासेस है, एक होता है क्लास सुनना और वो भक्ति रस भक्ति है, गए क्लास सुना मुरली सुना झटक दिया आ गए, दिस इज भक्ति मार्ग। नोट्स निकालने हर बात के, अगर क्लास भी सुन रहे हो उसको पॉज करो नोट्स निकालो, पॉज करो नोट्स निकालो, वो ज्यादा प्रभावी है। या फिर सबसे अच्छा सीधा यहाँ पर नोट करो, ठीक है ना ज्योति बहन, फिर किसी और नोट की जरूरत नहीं, सीधा ब्रेन में। हाँ स्टूडेंट्स के सिवा नोट्स के सिवा तो रहता ही नहीं है। और आधा घंटा योग, चलो ठीक है,
अच्छा होता है।
नहीं लौकिक का हम चर्चा कर रहे हैं, लौकिक का जो स्टूडेंट है उसकी संग अच्छा होता है, स्टूडियस स्टूडेंट्स के बीच में रहेगा वो, बाकी ऐसे स्टूडेंट की जो टाइम वेस्ट करते हैं उनके साथ वो कभी नहीं रहेगा। उसका संग जो होगा वो जो अध्ययनशील है, जो स्टूडियस है, जो उससे अधिक जानते हैं उनके साथ वो रहेगा हमेशा। और
दूसरे स्टूडेंट को खींच लेगा अपनी तरफ,
दूसरे स्टूडेंट को अपनी तरफ खींचेगा और क्या करेगा,
और हमेशा पढ़ाई के बारे में, अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में सोचेगा,
अपने पढ़ाई के बारे में चिंतन मनन अध्ययन करते रहेगा और चर्चा करेगा ज्ञान की अपनी। उसके पास बहुत सारे प्रश्न रहेंगे हमेशा, जिज्ञासु रहेगा वो, क्या है क्या है क्या है, संतुष्ट नहीं होगा कभी ज्ञान के बारे में। हो गया मुरली सुन रहा, अरे वो क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा क्यों कहा, ये सारे प्रश्न उसके मन में निरंतर उत्पन्न होते रहे। जिज्ञासा वृत्ति हमेशा कभी ना खत्म हो। जैसे छोटा बच्चा होता है सागर किनारे जाता है तो वो सीप बीनता है या पत्थर लेता है, उसको जिज्ञासा होता है ये ऐसा क्यों ये वैसा क्यों ये क्यों, ये जिज्ञासा वृत्ति खत्म ना हो। ये जो मुरली जो पढ़ रहे है रोज की, ये ऐसा क्यों कहा, इसका क्या अर्थ है, गुणार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है, शब्दार्थ क्या है, ये नया शब्द आज मुरली में आया है वो शब्द का अर्थ क्या है। तो जिज्ञासा, जिज्ञासा जब होती है ना तो व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है। जिज्ञासा चाहिए हर चीज की, हर चीज को जानने की, यज्ञ के इतिहास को जानने की, यज्ञ की मर्यादाओं को जानने की, श्रीमत को जानने की। हमारे मन में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्यों है, उस दिन कहा ना कारण को निवारण करो, लास्ट संडे की मुरली, कारण को निवारण करो, कारण खत्म माया खत्म। तो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए अंदर ही अंदर, जिज्ञासे के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे एक जंगल में एक साधु रहता था, उसके पास कोई आता नहीं था, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लगा दिया, पत्थर खाना सख्त मना है, और एक ऐसा एरो कर दिया अपनी झोपड़ी की तरफ, और वो दूर रहता था, उसके पास उसको उपदेश देना था लोगों को, पर कोई आता ही नहीं था तो क्या करेगा। अब जो भी वहां से गुजरता था, पत्थर खाना मना है और एरो तो जरूर जाना ही चाहिए, क्या बात है ये। तो वो कोई भी वहां से जाता था और उसको वो उसके पास आता था पूछने के लिए कि भाई पत्थर खाना मना है, ये तो बड़ी अजीब बात है, बोले ये क्या लिखा आपने, और बोले बहुत अच्छा लिखा, बैठो अब आ गए ना बैठो।
तो यहाँ भी लिखेंगे यहाँ आना मना है।
तो जिज्ञासा उत्पन्न हो गई उनमें हर एक में, तो बोले ये रास्ते से जो भी जाता है मेरे पास तो आना ही है उसको, क्योंकि जिज्ञासा। तो इसी तरह जिज्ञासु होगा और आज्ञाकारी होगा, ओबीडियंट होगा, नई नई सोच, नया सोच, नया विश्वास, नया उमंग, नई जिज्ञासा, संयम नियम में भी रहेगा, यूनिफॉर्म होगा एक स्टूडेंट का, बैज लगा हुआ रहना चाहिए, साड़ी पहनी हुई होनी चाहिए, जटाएं खुली रहनी चाहिए और सेवाएं होती रहे, तुम राज ऋषि हो, अब साकार महावाक्य है। और हाँ एक दूसरे से ज्ञान चर्चा चालू रहेगी, बिना ज्ञान चर्चा के यहाँ उन्नति नहीं हो सकती। यहाँ इतने सारे प्रश्न अंश सुलझे बेसूच ऐसे प्रश्न है कि जिनको चर्चा ही चाहिए। मुरली में इतनी सारी बातें आती है कि वो खाली एक बार पढ़ लेने से नहीं होता है, उसकी चर्चा करनी होती है, बहुत डिस्कशन रिसर्च करना होता है, एक एक टॉपिक पर थीसिस करना होता है, एक एक महावाक्य पर, तब कहीं जाकर वो समझ में आता है। और ऑनेस्ट रहेगा, हर चीज की डेप्थ में जाएगा। बाबा ने हमेशा कहा है जब गहराई में जाओगे तो घबराहट खत्म होगी। अभी घबराहट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान कम है। देखो अव्यक्त मास था, पर मुरली अव्यक्त स्थिति के बारे में नहीं चली, अव्यक्त मास्ता ब्रह्मा बाबा के बारे में बिल्कुल शब्द नहीं है, ब्रह्मा बाबा के प्यार के बारे में नहीं है, योग के बारे में नहीं है, सब योग कर रहे हैं, योग और बढ़ाओ उसके बारे में मुरली नहीं है, मुरली किसके बारे में चल रही है, पढ़ाई के बारे में चल रही है, अद्भुत। अव्यक्त मास 18 जनवरी और मुरली चल रही है, पढ़ाई को बढ़ाओ, इंटरेस्ट को बढ़ाओ, अगर कहीं आदत में बिजी हो तो उसको खत्म करो, और किसी सब्जेक्ट में अटेंशन है उसको खत्म करो, और कोई बात बीच में आ जाती है उसको खत्म करो।
बाबा ने देख लिया होगा आपको
तो पढ़ाई। अच्छा ओम शांति। कल
बता दो,
नहीं आप परसों कर लेना, हम कल कर देंगे, कुछ काम खत्म। और इन माताओं को देखकर और किसी को उमंग आता है तो बता देना, उनका नाम इधर डाल देंगे। बहुत अच्छा, दोनों ने बहुत अच्छा बताया, फर्स्ट टाइम बट बहुत अच्छा। ओम शांति।